मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 20 अप्रैल 2020 है और आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं कुछ सूचनाएं देना चाहूंगा और यह सूचना हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस के स्टूडेंट हैं उनके लिए है। ऑनलाइन क्लासेस के जो हमारे पेड यूजर हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी सूचना है, बहुत ही सुखद सूचना है और शायद इस सूचना को सुनने के बाद डेफिनेटली उन्हें उत्साहित भी होना चाहिए। और सूचना यह है फ्रेंड्स कि आप सबके लिए 10 मॉक टेस्ट डाल दिए गए हैं। 10 मॉक टेस्ट पेपर, जनरल स्टडीज फर्स्ट का जो आपका प्री का पेपर होता है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर। एक पेपर में 100 क्वेश्चंस होते हैं, इस तरीके से 10 पेपर में टोटल आपको 1000 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं और ये आपके जो सिलेबस है आप ये मान करके चलिए कि उसी का ही हिस्सा है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है फ्रेंड्स कि ये जो आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए गए हैं ये बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से एग्जामिनेशन के पैटर्न पर हैं। यानी कि जैसे आप एक मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, इसके बाद आप बकायदे अपना स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। 2 घंटे का उसमें समय निर्धारित किया गया है, 2 घंटे में आप उसे हल करें। जो आपके क्वेश्चंस गलत होंगे उनकी नेगेटिव मार्किंग भी अपने आप हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि आपका स्कोर कितना हुआ है। तो ये 10 मॉक टेस्ट आपके लिए उपलब्ध करा दिए गए हैं। इन मॉक टेस्ट को आप कैसे हल करेंगे, इनका आप कैसे उपयोग करेंगे, इसकी जानकारी मैं आज के मुख्य विषय के अंतर्गत दूंगा। और ये जो मेरा मुख्य विषय है ये हमारे ऑनलाइन क्लासेस के जो पेड स्टूडेंट हैं उनके लिए भी होता है और जो ऑफलाइन स्टूडेंट हैं उनके लिए भी होता है। तो दोनों के लिए चूंकि वो समान सी ही बात होगी, क्योंकि हमारे जो आप दूसरे स्टूडेंट हैं वे भी जनरली मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं से मॉक टेस्ट करते ही हैं, हल करते हैं, या कह लीजिए कि उस तरह की बुक्स मिलती हैं उसके माध्यम से वो इस तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं। तो बेहतर होगा कि मैं उसे एक मुख्य विषय के तहत बातें उस पर करूं। लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जो एक इम्पॉर्टेंट खबर है खासकर COVID-19 को लेकर के, यानी कि कोरोना वायरस को लेकर के, पता नहीं आप सबके दिमाग में क्या बात चल रही है, अंदर एक दबाव सा महसूस कर रहे होंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जो डेटा हमारे पास आ रहे हैं वो काफी राहत देने वाले हैं, तो आप थोड़ा सा राहत महसूस कर सकें केवल इस दृष्टि से मैं आपके सामने कुछ डेटा COVID-19 को लेकर रख रहा हूं। भारत के लिए एक अच्छी बात यह है कि भारत में जो संक्रमण की दर है वो धीरे धीरे लगातार कम हो रही है। देखिए, टोटल संक्रमण तो बढ़ रहा है, हम लगभग 16,000 के ऊपर पहुंच गए हैं, टोटल संख्या बढ़ रही है, लेकिन उसके बढ़ने की जो दर है वो कम हो रही है। और इसके पीछे नो डाउट कि बहुत बड़ा योगदान खासकर सोशल डिस्टेंसिंग का है, जो लॉकडाउन किया गया है। चूंकि ये संक्रामक बीमारी है, एक दूसरे के मिलने से ही फैलती है, तो चूंकि मिलने की स्थिति को एक तरीके से आप यूं कह लीजिए कि बहुत कठिन बना दिया गया है, तो इसके फैलने की दर भी कम होती जा रही है। तो इसे आप एक बहुत ही एक संतोषजनक स्थिति मान सकते हैं। डेटा बता रहा है कि 5 दिन पहले इसकी जो वृद्धि दर थी वो 8 थी, 5 दिन पहले, और अब यह घटकर 6.6 हो गई है। यानी कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो अपना काम कर रही है। पहले 5 दिन पहले 8 दिन में जो आंकड़े थे जो संक्रमण के वो दुगने हो रहे थे, वो अब बढ़कर 11 दिन हो गया कि 11 दिन में मरीजों की संख्या दुगनी हो रही है। तो ये एक संतोष की बात है। एक दो डेटा और भी है दोस्तों। ये माना जाता है कि अगर लॉकडाउन नहीं किया जाता तो 18 अप्रैल तक भारत में लगभग 2,12,000 लोग संक्रमित हो चुके होते 18 अप्रैल तक, और आज हम 20 अप्रैल में हैं, 2,12,000, और उसकी जगह पर अगर आज संख्या यह 16,000 के करीब है तो डेफिनेटली ये लॉकडाउन का ही कमाल कह सकते हैं या लॉकडाउन की ही देन कह सकते हैं। भारत में जो मरीजों की रिकवरी दर है वह भी बहुत अच्छी है कंपेयर टू यूरोपियन कंट्री। देखिए, जो दुनिया में जो रिकवरी दर है वो 78.84 या 79% है, जबकि भारत में यह लगभग 82.45 है। तो बहुत बेहतर है, और जो मृत्यु दर है वो फॉरेन कंट्री की तुलना में हमारे यहाँ आधी है। दुनिया में जो इस बीमारी से मृत्यु दर है वो 6.8% है, जबकि हमारे यहाँ यह 3.18% है, बाहर से आधी, यानी कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं रिकवरी के मामले में। मित्रों, ये जो मैंने आपको बात बताई है इसका संबंध आपके जनरल स्टडीज से उतना कुछ नहीं है, इसका संबंध सिर्फ आपके मनोविज्ञान से है। इसका मतलब है कि कोरोना के खिलाफ जो हमारा देश जंग लड़ रहा है, जिसमें आप और हम सब भी शामिल हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग हमारा दायित्व है, उसे हम निभा रहे हैं, तो हम धीरे धीरे सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही राहत देने वाली बात है। तो इसीलिए अगर आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर के भय हो और तनाव हो, तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स्ड महसूस करना चाहिए, यह सोचकर कि जो प्रयास किए जा रहे हैं उनके सार्थक और सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। अब मैं आता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण एक न्यूज़ पर, जो जनरल स्टडीज़ की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। भारत सरकार ने अभी जो विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश है उसके लिए एक नया नियम घोषित किया है, नया नियम, और उसके तहत ये है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, अगर वे भारत में कोई निवेश करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उन्हें इसके लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो क्या पहले सरकार से परमिशन लेनी नहीं पड़ती थी? दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इस पर आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें। इसके बारे में मैं यहाँ बहुत विस्तार से नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए बहुत वक्त चाहिए। संकेत के तौर पर आपको एक दो बातें बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए दो रूट हैं, एक डायरेक्ट रूट होता है, एक इनडायरेक्ट रूट होता है। डायरेक्ट रूट में तो आपको सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप निवेश कर दीजिए और बाद में सरकार को बता दीजिए। लेकिन जो इनडायरेक्ट रूट है वो है कि सरकार से आपको परमिशन लेना पड़ता है, और सरकार जब परमिट कर देती तभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक बहुत से ऐसे सेक्टर थे जिसमें आप इनडायरेक्ट पर आप इन्वेस्ट कर सकते थे। अब सरकार ने यह कहा है कि नहीं, जो पड़ोसी देश हैं, खासकर देखिए इसका पर्पस क्या है, आप इसे समझिए कि कोरोना वायरस के वातावरण में ये क्यों किया जा रहा है। ये देखा गया है कि अब आप देखिए कि कोरोना वायरस के कारण दुनिया के शेयर मार्केट बहुत ध्वस्त हो चुके हैं, यानी कि शेयर्स के रेट बहुत कम हो चुके हैं। जो शेयर 1-1 हजार रुपए के थे, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उनकी कीमत लुढ़क करके 70-80-100 रुपए हो गई है, ये हालत है। तो सीधी सी बात है कि ऐसे समय में कोई भी व्यक्ति या कोई भी राष्ट्र हमारी कंपनी के खूब सारे शेयर खरीद सकता है, उसको बहुत सस्ती कीमत पर मिल जाएंगे, क्योंकि शेयर्स के रेट गिर गए हैं। और अगर उसने आधे से अधिक शेयर खरीद लिए या 1/4 शेयर भी खरीद लीजिए, तो आप सोच करके देखिए उस कंपनी पर उसकी कितनी बड़ी होल्ड हो जाएगी, बहुत बड़ी होल्ड हो जाएगी। वो उस कंपनी का एक प्रकार से मालिक भी बन सकता है, तो ये उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। खासकर चीन को ध्यान में रख करके ये बात की गई है, और ये केवल भारत ने ही नहीं किया है, बल्कि भारत से पहले जो दूसरे देश हैं वे भी ऐसा कर चुके हैं। अमेरिका और जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं, उन देशों ने, जिसमें जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं, उन देशों ने बकायदे अपने यहाँ की जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसके रूल्स में परिवर्तन कर दिए हैं, क्योंकि लोगों को डर है कि चाइना के पास तो पैसा है ही, वो हमारी कंपनियों के बहुत सारे शेयर खरीदेगा और पता लगेगा कि बाद में वो उन्हीं कंपनियों को कंट्रोल कर रहा है, तो इसको लोग वेलकम भी कर रहे हैं। दोस्तों, इसकी आलोचना भी थोड़ी बहुत हो रही है, वो तो खैर समीक्षा की बात है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी चाहिए। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और वह है कि जो टेस्ट सीरीज है आप उसका कैसे उपयोग करेंगे। तो ये जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस के स्टूडेंट के लिए जो 1000 क्वेश्चंस डाले गए हैं, 10 टेस्ट पेपर डाले गए हैं, उनके लिए भी है, और जो ऐसे स्टूडेंट के लिए भी है जो बाहर से कहीं और से टेस्ट पेपर हल कर रहे हैं या बुक्स के माध्यम से कर रहे हैं। हल करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। देखिए, एक तो सीधी सी बात है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, आप बकायदे जैसे एग्जामिनेशन हॉल में आप एग्जाम देते हैं बिल्कुल उसी पैटर्न पर दीजिए। एक आपने मॉक टेस्ट लिया, 2 घंटे का समय है, आप ऐसा मान करके चलिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आप टेस्ट पेपर सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, भूल जाइए, अब आपको दूसरा सॉल्व नहीं करना, आप इत्मीनान से रहिए। अब जो आपने टेस्ट पेपर सॉल्व किया है, जो सेकेंड स्टेज है, जो किसी भी मायने में पहले से कम नहीं है, वो रिव्यू करने का स्टेज है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, टेस्ट पेपर सॉल्व कर लिए आपने, अपने स्कोर देख लिए, उससे आपको कोई फायदा नहीं पहुंचना है। एक फायदा तो आपको जरूर मिलेगा ही कि आपके जो दिमाग का वातावरण है वो पेपर के हिसाब से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उस समय दिमाग में क्या कंफ्यूजन पैदा होते हैं, कॉन्फिडेंस का लेवल क्या होता है, इस तरह के आपको बहुत मनोवैज्ञानिक लाभ मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इससे आप कई गुना ज्यादा और फायदा उठा सकते हैं, और वो जो फायदा होगा मित्रों वो रिव्यू करके होगा। जब आपने जो टेस्ट पेपर दिया है, जब इस टेस्ट पेपर का आप बकायदे रिव्यू करेंगे, तब रियल सेंस में एक संपूर्ण लाभ आप इस टेस्ट पेपर का उठा सकते हैं। तो रिव्यू आप कैसे करेंगे? चलिए, जो आपके क्वेश्चन सही हुए उसके आधार पर आपको स्कोर मिल गए, जो गलत हुए उसके आधार पर माइनस मार्किंग हो गई। अब आपको देखना यह चाहिए कि ये जो मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है ये क्यों हुआ है। रिव्यू के मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, मैं कभी चल करके आगे हो सकता है इसके बारे में डिटेल्स में बात करूं, कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं कि आपको क्या क्या चेक करना चाहिए, इसके बारे में फिर हम लोग आगे बात करेंगे क्योंकि वक्त अब इतना नहीं है। आपको देखना चाहिए कि आपके क्वेश्चन क्यों गलत हुए, आप सही समझ रहे थे लेकिन गलत क्यों हुए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आप सॉल्व ही नहीं कर पा रहे होंगे, तो क्यों सॉल्व नहीं कर पाए, क्या पढ़ा हुआ था लेकिन भ्रम की स्थिति हो गई थी, या कि बिल्कुल नए टॉपिक से आया हुआ है, क्यों आप सॉल्व नहीं कर पाए। फिर अगर भ्रम रहा तो क्यों भ्रम रहा, यह आपको सोचना है। ये नहीं कि अरे यार इसमें कंफ्यूजन हो गया था, नहीं, कंफ्यूजन क्यों हुआ जबकि आपने इसे पढ़ा था, तो कंफ्यूजन क्यों हुआ, आपके पार्ट पर हुआ या क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा करके दे दिया गया, या क्वेश्चन घुमा फिरा करके दिया गया तो विकल्प बहुत ज्यादा दे दिए गए या समूह जटिल बना दिए गए, इस तरह से आपको डिटेल में उसके बारे में जानना ही पड़ेगा, चाहिए ही जानना ही चाहिए। इसके बाद आप देखिए कि कितने क्वेश्चंस ऐसे आपके थे जिसके बारे में आपको पूरा कॉन्फिडेंस था कि नहीं ये मेरा गलत नहीं हो सकता है। इसके बाद अब आप ये भी देखिए कि आप कितने क्वेश्चन के सही आंसर तक अनुमान लगा करके पहुंच गए, आप जानते नहीं थे लेकिन अनुमान लगा कि नहीं नहीं ये सही होगा। तो इस तरह के प्रश्नों की संख्या कितनी थी, इन सब को आप देखिए। और इसके बाद जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं और जो क्वेश्चन आपके नहीं बने हैं, बकायदे अपनी किताब उठाइए, पुस्तक उठाइए, उन टॉपिक्स पर जाइए, उन टॉपिक्स को पढ़िए, उस टॉपिक्स को पढ़ करके बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, और उस टॉपिक्स को समझने के बाद और फिर आप जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तब आपके अंदर एक अलग तरह की कैपेसिटी पैदा होगी, एक अलग किस्म की अंतर्दृष्टि पैदा होगी। और मित्रों, ऐसा नहीं है कि ये सारे टेस्ट सीरीज कंप्लीट करने के बाद आप ऐसा करें, एक एक टेस्ट पेपर आप सॉल्व करें और हर टेस्ट पेपर के साथ ऐसा करें। भले ही आपको 10 टेस्ट पेपर सॉल्व करने में एक महीना क्यों न लग जाए, पेपर आप केवल 2 घंटे में सॉल्व कर लेंगे लेकिन उसकी समीक्षा करने में आप 2 दिन लगाइए। सच पूछे तो ये आपके सिविल सर्विस प्री एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन का ही पार्ट है, इसे आप टाइम वेस्ट करना मत समझिए, क्योंकि इसके माध्यम से सही मायने में आप अपने मानसिक वातावरण का निर्माण कर रहे हैं और उस फोकस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं जो सिविल सर्विस प्री एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट है। राइट फ्रेंड्स, इसके बारे में यदि आप लोगों को यदि कुछ और जानना हो, कोई प्रश्न आपके पास और हो तो मुझे आप ईमेल लिखें, मैं उन ईमेल के आधार पर यदि जरूरत महसूस हुई तो डेफिनेटली इस विषय पर और भी बात करना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ और यहीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, अनूप राज, शुभम कुमार, आत्री परवीन, उमाशंकर, सौरभ रायपुर छत्तीसगढ़ से, मोहित खुशवा, अनिल वर्मा, वीना गौरव, अभिषेक अविनाश, सुहैब सैफी, प्राशिक गवई बुल्ढाना महाराष्ट्र से, शिव प्रताप सिंह, सुमन कुमारी लखनऊ से और महेंद्र चावड़ा जोधपुर राजस्थान से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।